और अभी हमारे बीच दिलाराम बाबा के दिल तख्त नसीन आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे बीच विराजमान है। हम आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत तहे दिल से इस रात्रि क्लास में अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भ्राता जी का स्वागत है। आदरणीय भ्राता जी ने 1980 में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री प्राप्त की। 1986 से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और 1995 से आप ग्लोबल हॉस्पिटल में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2006 में आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं। समय प्रति समय आप कैड का बहुत सुंदर प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जिसमें अनेक हृदय रोगियों के लिए आप विदाउट मेडिसिन बहुत सूक्ष्म दवाइयों और एक्सरसाइज के द्वारा, राजयोग के अभ्यास के द्वारा हृदय रोगियों के दिल को आप राहत पहुंचाते हैं। तो ऐसी मान विभूति आदरणीय भ्राता जी हमारे बीच विराजमान है। विभिन्न टॉपिक्स जैसे माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के द्वारा आप अपने ओजस्वी वक्तव्य के द्वारा देश विदेश की आत्माओं को लाभान्वित करते रहते हैं। तो ऐसी मान विभूति हमारे बीच विराजमान है। आज का हमारा विषय है बेहद की वैराग्य वृत्ति हमारे जीवन में कैसे आए। तो आदरणीय भ्राता जी के ओजस्वी वक्तव्य के द्वारा हम सब लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः भ्राता जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिवादन।
हम सभी ने परसों ही बाबा से बाबा की मुरली सुनी। इतना स्नेह का सागर हमारा बाबा, किंतु वो स्नेह हम कैसे बाबा का निरंतर महसूस कर सके, निरंतर बाबा के दिलाराम के दिल में समाये रहें, वो कैसे पॉसिबल है? आप सभी को एक बार याद होगा, बाबा ने मुरली में कहा था, कोई अगर दिन रात भी तपस्या करे, दिन रात लगा रहे, रात को सोना भी बंद कर दे, सिर्फ तपस्या तपस्या और तपस्या करता रहे, तो भी अभी कर्मातीत नहीं बन सकता। याद है ये मुरली का पॉइंट? अभी कुछ 13-12 दिन पहले की बात है, तभी बाबा ने मुरली में कहा था। तो इसके पीछे क्या राज है? तो आज हम इसी बात को बहुत गहराई से डिस्कस करेंगे कि कर्मातीत बनने के लिए विक्रमाजीत बनना पड़ेगा। विक्रमाजीत बनने के बाद ही हम कर्मातीत बन सकते हैं, और कर्मातीत बनने के बाद ही हम संपूर्ण बन सकते हैं, और उसके बाद अवेक्त फरिश्ता बन सकते हैं। ये 4 स्टेप हैं फरिश्ता बनने के। पहले हमें विक्रमाजीत बनना पड़ेगा, विक्रमाजीत बनने के बाद हम कर्मातीत बनेंगे, अर्थात कर्म करते कर्म का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। कोई भी कर्म करते वो भी बंधन का रूप ले लेता है। किसी का हम भला करेंगे तो भी बंधन बन जाता है, और बुरा करते तो बुरा भी बंधन बन जाता है ना। अच्छा बुरा दोनों ही बंधन का रूप ले लेता है। तो अभी हम विकर्म विनाश भी कर रहे हैं और साथ साथ विकर्म हो भी रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम विकर्म नहीं कर पाए, क्योंकि जरा भी देवमान आया, देवीमान आया, किसी बात का लगाव आया, कोई बात हमें कोई अच्छा लगा, कोई खाने की चीज भी हमने आसक्ति से खा ली तो विकर्म बन गया। कोई हमें अच्छी चीज लगी, हमें ज्यादा से ज्यादा खा ली, विकर्म बन गया। तो बहुत सूक्ष्म है। अभी विकर्म विनाश भी कर रहे हैं और विनाश नए बना भी रहे हैं। तो अभी बनता भी 100 गुना है और बाप की मदद से 100 गुना विनाश भी होता है। तो रोज का अकाउंट देखो तो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं लगभग, है ना। तो ये विक्रम विनाश हमारे हो जाए, उसके बाद फिर हमारी कर्मातीत स्थिति आएगी। उस कर्मातीत स्थिति में क्या होगा कि हमारी कर्म करते हुए हमको बुरा कर्म तो नहीं करेंगे, उसमें व्यर्थ और नेगेटिव तो नहीं करेंगे, किंतु अच्छे कर्म भी हमारे साथ हमें जैसे एकदम फरिश्ते के माफिक बन जाएंगे। मतलब हमारा उस पर असर नहीं होगा, कर्म बंधन का रूप नहीं लेगा, तो कर्मातीत स्थिति होगी। और कर्मातीत बनने के बाद फिर हम संपूर्ण, मतलब तब हमारी बैटरी चार्ज होगी संपूर्ण, तब हम सत्व प्रधान बनेंगे। और सत्व प्रधान बनने के बाद फिर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, संकल्पों से काम होगा। इशारों से काम होगा और भावनाओं से काम होगा, वाइब्रेशन से काम होगा, सकाश, मतलब तब हम अवेक्त, हमें बिना बोले हम काम कर सकेंगे। संकल्प हमारे, हम यहां बैठे संकल्प करेंगे सारे विश्व को टच होगा और फिर हम फरिश्ता बनेंगे। तो ये 5 स्टेप कहो या 4 स्टेप कहो, ये हमारे हैं। इसको हमें करने के वास्ते हम कैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करें, इसके लिए मैं चाहूंगा हम 2 मिनट के लिए फिर अपने आप को मन बुद्धि से एकाग्र कर लें, ताकि हम अगले 40 मिनट लगभग इस बात को बहुत गहराई समझें कि वो स्थिति हमारी कैसे बन जाए जो बाबा चाहता है कि हम ब्राह्मण से फरिश्ता बने और फरिश्ता बन के बाप के साथ साथी बन के घर जाएं। चलिए 2 मिनट फिर से ब्राइट लाइट में मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र, एक बाबा एक में, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, मुझसे 7 एनर्जी कहो, 7 गुण सारे शरीर में जा रहे हैं, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद और शक्तियां। शिव बाबा 7 गुणों का सागर है, हमसे कितनी दूर है, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है, सोचा और कनेक्शन हुआ, बाबा से वो एनर्जी मुझ में आ रही है, मुझसे सारे शरीर में जा रही है, चलिए, और मुझसे सारे ग्लोब पे जा रही है, सारी धरती पर जा रही है। आज का विषय है बेहद की वैराग्य वृत्ति। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर ब्राह्मण शब्द के अर्थ में ही जाएं, तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ हम मनुष्य से ब्राह्मण बने। जब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए और सबसे पहले आते ही उन्होंने हमें क्या बनाया, मनुष्य से ब्राह्मण बनाया, या बाबा कहते शूद्र से ब्राह्मण बनाया। शूद्र माना ही 5 विकारों में, जिसकी मन और बुद्धि 5 विकारों में ग्रसित हो, उसमें फंसी हुई हो। और मनुष्य माना, मनुष्य का मतलब ही है मन, मन माना मन, और उष्य माना वश में। जो मनुष्य कौन है, जो मन के वश में है, और मन किसके वश में है, 5 कर्मेंद्रियों के वश में है। 5 कर्मेंद्रिय किसके वश में है, 5 प्रकृति के तत्वों के वश में है। सबसे पहले 5 प्रकृति के तत्व किससे बने हुए हैं, शरीर किससे बना हुआ है, 5 प्रकृति तत्वों से। तो सबसे पहले देह के वश में है मन, आज किसके वश में है, मनुष्य है ना, जिसका मन किसके वश में है, देह के वश में है, देह का बंधन है उसे। दूसरा, देह के संबंधों का बंधन है। तीसरा, देह के पदार्थों का बंधन है। चौथा, देह का स्वभाव है। ये 5 विकार देह का स्वभाव है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इंसान कहता है छोड़ना चाहता है, कोई इंसान क्रोध नहीं करना चाहता है, कोई इंसान लोभ नहीं करना चाहता है, उसको पता है कि ये मेरे साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी लोभ करता है। पैसे का लोभ नहीं करता है, कई बार नाम मान शान का लोभ करता है, मेरा नाम हो, मेरी शान हो, लोग मुझे पूछें, है ना। और फिर मोह पता है उसको, फिर भी वो करता है, अहंकार भी करता है, काम विकार भी चाहता नहीं कोई इंसान कि काम विकार में फंसे, किसी के साथ फंसे, किंतु किसी की बुद्धि किसी में जाए, खुद को गलानी आती है अपने ऊपर, किंतु फिर भी फंसता है ना। तो मनुष्य फंसता है, इन पांच विकारों में ग्रसित है, और फिर पांच विकारों की ये तो स्वभाव है, ये देह का स्वभाव है, नेचर है देह की, जहां अपने को देह समझा ये पांच विकार अपने आप आ जाते हैं, किसी और की किसी और को देह के रूप में देखा पांच विकार आ जाते हैं, मौसम को देखा पांच विकार आ जाएंगे, है ना। तो ये जो है पांच प्रकृति के तत्वों को देख के भी विकार आ जाते हैं, और फिर देह की आदतें हैं कुछ, जिसे संस्कार कहते हैं, संस्कार माने आदत, जैसे आलस्य करना देह की आदत है, इंसान हम में से ब्राह्मण भी हम कभी आलस करना चाहते नहीं किंतु फिर भी आलस कर लेते हैं, नहीं हम केयरलेस नहीं होना चाहते कभी, फिर भी केयरलेस हो जाते हैं, अलबेलापन आ जाता है, चिंता नहीं करना चाहते फिर भी चिंता आती है, भय नहीं करना चाहते, पता है डरने की बात कुछ भी नहीं फिर भी डर लगता है, नहीं लगता है, शक अनुमान, दूसरों में दोष निकालना, बदला लेने की भावना, प्रेशर में आना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मतलब जल्दी में आना, और गुस्सा करना, और सॉरी ईर्ष्या द्वेष करना, ये देह की आदतें हैं, इनके वश में मनुष्य रहता है। तो ये मनुष्य, तो बाबा जब आते हैं, शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं, सबसे पहले हमको मनुष्य से ब्राह्मण बनाते हैं। जैसे ब्रह्मा शब्द का मतलब क्या है, ब्रह्मा माना ब्रह्म माना बड़ा या विशाल या बेहद, ब्रह्म मीन्स बेहद और मन, अर्थात ब्राह्मण जिसका मन और बुद्धि बेहद में रहे, मनुष्य माना जिसकी मन और बुद्धि हद में रहे, देह हद है, देह के संबंध हद में है, देह के स्वभाव संस्कार हद के हैं, ये हमारे साथ जाने वाले नहीं है, ना हम लेकर के आए थे ना हम इनको लेकर के जाएंगे, परंतु हम जा सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऊपर जाएगा, आलस ऊपर जाएगा, अलबेलापन ऊपर जाएगा, शक अनुमान चिंता भय ऊपर जाएगी, साथ में जाएगी ईर्ष्या द्वेष जाएगा, जल्दीबाजी जाएगी, जाएगी नहीं, तो ये चीजें हमारे साथ जाने वाली नहीं है, तो हद है इनकी। तो ये चारों चीजें, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, हम में से कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, तो ये हद में है, मनुष्य की बुद्धि हद में रहती है, मन और बुद्धि हद में रहता है, और हमारा ब्राह्मण माना ही, ब्राह्मण माना जिनकी मन और बुद्धि बेहद में रहे, राइट। तो मतलब हदों से पार रहे, तो ब्राह्मण शब्द का मतलब ही है बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले, सच्चा ब्राह्मण वो जिसको किसी भी हद से राग ना हो, किसी भी हद से, हद माना देह हद है, ना अपनी देह से ना किसी और की देह से जरा भी अटैचमेंट ना हो, किसी संबंध से अटैचमेंट ना हो, लगाव ना हो, देह के पदार्थों से, कोई चीज खाने की चीज, पीने की चीज, पैसों से, वस्त्रों से, किसी भी चीज से लगाव ना हो, ठीक है, और देह के स्वभाव से लगाव ना हो, देह के संस्कारों से लगाव ना हो, ठीक है, तो उससे परे हो, उसकी बुद्धि बेहद में रहे, बेहद माना आत्मा बेहद है, आत्मा का संबंध परमात्मा से बेहद है, मेरा हर संबंध शिव बाबा के साथ है, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा, ये नौ तो संबंध मुख्य है बाबा के साथ, किंतु हर संबंध उनके साथ निभा सकते हैं, भाई का, बहन का, किसी भी साजन नाम लीजिए आप, कोई भी संबंध उसका हम उससे निभा सकते हैं, वो हमारे साथ कोई संबंध भी और कहीं भी निभा सकता है, ऐसा भी नहीं कि हम कहीं एक स्पेशल जगह पे तो वहां पे नहीं, हर जगह बाबा हमारे साथ है, तो उसको उससे हमारा संबंध निभा सकते, बेहद हमारे संबंध है उनके साथ। और जो आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव क्या है, ये सात गुण आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये आत्मा का स्वभाव है, ये आत्मा की नेचर है, हर आत्मा के पास ये स्व का नॉलेज है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और संसार रूपी नाटक क्या है, अर्थात ज्ञान सार रूप में क्या है, ABCD, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन अर्थात संबंध, और डी फॉर ड्रामा। तो ज्ञान ये हर आत्मा के पास है, किंतु मर्ज रूप में जब मनुष्य बनते हैं, जब हमारी बुद्धि बेहद से हद में आ जाती है, तो तो ये ज्ञान मर्ज हो जाता है और देह का ज्ञान इमर्ज हो जाता है। पांच तत्वों का ज्ञान, ये साइंस इमर्ज हो जाती है। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? पांच तत्वों के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है? पांच तत्वों के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और ये जो इस आत्मा के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं, राइट? तो पांच तत्वों का, इसलिए विज्ञान साइलेंस को समझ नहीं सकता है। हालांकि आजकल बहुत सारी मशीनें बन रही हैं जिसके द्वारा उस तरह की इंडिकेशन हमें मिलती है, किंतु विज्ञान का कोई साधन आत्मा को देख नहीं सकता है। कोई मशीन उसको दिखा नहीं सकती कि आत्मा यहां पर रहती है या आत्मा ऐसे निकलती है। कोई भी साधन आत्मा को ढूंढ नहीं सकता है, चेक नहीं कर सकता है। और जो है फिर इसके बाद, तो जब अगर सच्चे ब्राह्मण हम हैं तो हमारा अटैचमेंट होना ही नहीं चाहिए किसी बात से भी। भेद की वैराग्य वृत्ति का मतलब ही है ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण। अब जो है हम देखते हैं आज हमारे ब्राह्मणों में भी क्या क्या बातें, कैसे हमें बाबा कहता है कि अभी हम कर्मातीत नहीं बन सकते हैं। चलिए दो मिनट बाबा को बहुत प्यार से याद करें। देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से एकदम निकाल के एकदम मैं आत्मा हूँ, चमकता सितारा और बाबा, बस मैं और मेरा बाबा। जैसे अगर हम देखें, जब ब्रह्मा बाबा, जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो रहे, नंबर वन एग्जाम्पल रहे बेहद की वैराग्य वृत्ति, कौन रहे? ब्रह्मा बाबा। जैसे ही बाबा भी जब बाबा ने शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, प्रैक्टिकली क्या किया, जैसे ही उनको महसूस हुआ कि शिव बाबा जैसे परमात्मा, जैसे परमात्मा ने उनको दृश्य दिलाया दिखाया, पहले तो विष्णु, पहले तो उनको शिव का हुआ है ना, फिर उसके बाद विष्णु का हुआ, फिर उसके बाद विनाश का, फिर स्वर्ग की दुनिया का है ना साक्षात्कार, जैसे ही हुआ बाबा ने एकदम निश्चय बाबा को हो गया। तो बाबा ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बाबा ने क्या किया, विश्व शिक्षक को अपना शिक्षक बनाया। जैसे ही बाबा ने, शिव बाबा ने जैसे कहा बस दुनिया विनाश होने वाली है, बाबा ने उस दिन से ही दुनिया को खत्म मान लिया और तुरंत उसने अपना सब कुछ तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास सब कुछ बाबा के यज्ञ में स्वाहा कर दिया। जरा भी तन का भान, मतलब एकदम टोटल बेहद का वैराग्य आ गया। और हम बच्चे क्या करते हैं, अभी तो घर की जिम्मेवारी है, अभी तो हमको ये करना है, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों का, बच्चे पढ़ लिख जाए फिर करेंगे, नहीं अभी तो हमारा ड्यूटी का आवर ऐसा है, सुबह जल्दी जाना पड़ता है, मुरली सुबह नहीं सुन सकते हैं, शाम को आके सुनेंगे, इंटरनेट पे सुन लेंगे है ना, संडे थर्सडे दो दिन क्लास कर लेंगे है ना, नहीं अभी हम कन्वीनियंस से चलते हैं ना। और बाबा ने इसलिए कहा कि बच्चों का जब तक ये चीज नहीं छूटेगी, जब तक देह की वैराग्य वृत्ति नहीं आएगी अपनी देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, और तीसरा बाबा ने कहा सेवा के, सेवा में जो मैंपन आ गया है, अभी ब्राह्मणों में क्या है, सेवा में मैंपन और मेरापन आ गया है, ये तो मेरी सेवा है, ये तो मैं ही कर सकता हूं, दूसरे नहीं कर सकते। और एक तीसरी बात, चौथी बात जो है वो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो है वो है, एक कुछ बातों को हम जैसे सूक्ष्म, इतनी बातें हमारे अंदर हैं, अगर आपको पता हो साइकोलॉजी के नियम के अनुसार 11 साल की उम्र तक जो कुछ हम भी, जो कुछ हम बचपन में माता पिता में देखते हैं, भाई बहनों में देखते हैं, अपने टीचर में देखते हैं, अपने साथियों में देखते हैं, स्कूल में बच्चों में देखते हैं, अगर हम उससे इंप्रेस होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो हमारे अंदर वो रिकॉर्ड हो जाती है, और रिकॉर्ड होने के बाद फिर हमारे वो अंदर, हमारे अंदर समा जाती है और उसको मेंटली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं एग्जांपल जैसे देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर एक छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, घर में देख रहा है 4-5 भाई हैं, 4-5 भाई बहने हैं, माता जी कोई काम कह रही है, कोई काम करता नहीं है, पिताजी आए, पिताजी ने एक बार गुस्सा किया और सबने काम करना शुरू कर दिया, तो बच्चे के मन में क्या इंप्रेशन जाएगा, बिना गुस्से के काम नहीं होता है, और वो एक बार नहीं देखता है, बार बार देखता है, स्कूल घर में देखता है, स्कूल में देखता है, हर जगह बार बार देखता है, हाँ गुस्से से, गुस्सा करने से काम होता है, ये जल्दी करो, जल्दी करो, तो सब लोग जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। फिर देखता है कि अगर रोने से, अगर माता जी रो देती हैं, कोई मानता नहीं, पिताजी भी नहीं मानते, माँ की कोई, हम भी नहीं मानते, और माँ के रोने से पिताजी भी मान के उनका उनका काम करना शुरू कर देते हैं, तो हाँ रोने से जब काम ना हो तो रोने से काम हो जाता है। ऐसे बहुत सारी हमारे इंप्रेशंस बचपन में बन जाते हैं और उससे हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है और उसको हम अच्छा समझते हैं, अच्छा समझते हैं मतलब उसको हम डिफेक्ट नहीं समझते हैं, भले ज्ञान में चलते हमें 40 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, 55 साल हो जाए, 30 साल 20 साल हो जाते हैं, उनको हम अपना समझते हैं। जैसे आपके घर में आपका कोई नौकर हो और आपको खाना बना के देता है, कपड़ा आपका बेड बना के देता है सोने के लिए, सुबह सुबह उठते ही चाय देता है आपको है ना, और आपके कपड़े धो के देता है, सब कुछ करके देता है, हमेशा हाँ जी भी करता रहता है, किंतु वही आपकी तिजोरी से पैसे निकालता रहता है, खोखला करता रहता है आपको पीछे पीछे, आप उस पर इतने आधारित हो जाते हो कि वो आपको, उसका कोई कहे भी ना कि इसने आप ये आपकी चोरी करता पीछे, उसको मानेंगे नहीं हम। इसी तरह से जो आते हैं, जिनको बाबा के मूल संस्कार कहता है, ये जल्दीबाजी करने का संस्कार, चिंता करने का संस्कार, गुस्सा करने का संस्कार, डरने का संस्कार, दूसरे में दोष निकालने का संस्कार, शक करने का संस्कार, एक आदत के रूप में हमें पड़ जाता है, और वो ईर्ष्या करने का संस्कार, कंपटीशन कंपैरिजन करने का संस्कार, वो आदत के रूप में हमें पड़ जाता है, पता लगता है हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आता है। थोड़ी थोड़ी बात पर शक करना, जैसे अगर माताजी किसी बात पर शक करती हैं बार बार किसी के ऊपर, अनुमान लगाती नहीं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया होगा, ऐसा हो गया होगा, अंदाजा लगाते रहते हैं, तो वो हमें भी संस्कार पड़ जाता है। और हम उसके वश होकर के ज्ञान में मुरली सुनते सुनते भी, अमृत वेला करते करते भी उनको अपना समझते हुए उनको नहीं निकालते, और ये संस्कार हमारी स्थिति को आगे नहीं बढ़ने देते। ये भी एक सूक्ष्म लगाव हो जाता है और इसको हमारा दिल रूपी दर्पण इसको समझ नहीं पाता है, ये खराब है कि अच्छी बात है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक उसके हजारों फायदे हमने हजारों बार देखा, इससे काम हुआ है। हमें अपने आप को हम अपने उससे चेक करते हैं, अपने माता पिता से, टीचर से, भाई बहनों से, दोस्तों से, जबकि हमें अपने आप को चेक करना है देवता स्वरूप से, ब्रह्मा बाबा के स्वरूप से चेक करना। कंपैरिजन हमें किससे करना है कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हमारी मम्मा ने क्या किया, या देवता कैसे करते हैं, तो उनको बकायदा एक एक चीज को लिख के निकालना पड़ता है। तो जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो बहुत सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो, जैसे चाणक्य को, चाणक्य का याद है ना आपको, चाणक्य का क्या बात थी, चाणक्य के पिताजी की डेथ हुई थी, एक घास जो नुकीली घास होती है उसको चुभने से डेथ हुई थी, है ना। तो पहले तो उसने देखा कि पहले तो उसने घास को काटा, फिर घास की जड़ होती है ना जमीन के अंदर रह जाती है, तो उसको निकलने से, उसको बहुत नुकीली होती है, निकाल नहीं सकते हैं, खींच के निकाल नहीं सकते, फिर उसमें शहद डाला जड़ों में ताकि चींटियां उसकी जड़ को भी खा जाए, वो जड़ कभी वापस ना हो गई। तो हम भी क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से विक्रम विनाश कर लेते हैं पर नीचे अंदर जो जड़ है उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो बहुत गहराई से हमें इसको देखना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक से दो राज हमें समझने होंगे। एक तो हम रिटर्न जर्नी पे हैं, बल्कि इससे पहले भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि बुद्धि में हमारे चार बातें हैं, और ये बातें, ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना आपको, जो हमारे जो मूल संस्कार जो हम कहता हूं, ये हमारे दिल में बस गए हैं। पांच विकार भी हमारे दिल में चले गए, कॉन्शियसनेस में चले गए, और उसको जब तक रूट आउट नहीं करेंगे तब तक वो निकलेंगे नहीं। बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट जो अंदर का कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं उसको, और नॉर्मली इसमें सात गुण भरे रहते हैं। जब आत्मा सत्व प्रधान है सात गुण भरे रहते हैं, उससे फिर विवेक बनता है। सत्युग में हमारा विवेक ईश्वरीय था, सत्य विवेक था, सद विवेक था, और बुद्धि से हमारी निर्णय शक्ति बनती है, उससे बुद्धि निर्णय करने शक्ति बनती है, और उसके बाहर हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, चित्त जिसे कहते हैं। जब दिल में सत्य है, मतलब अर्थात ज्ञान भरा हुआ है, एबीसीडी भरा हुआ है सत्युग में, तो हमारा विवेक ईश्वरीय है, सत्य विवेक है, हमारा बुद्धि जो है वो दिव्य है, और चित्त हमारा शांत एकाग्र और आनंदमय है, आनंद स्वरूप है। अर्थात जब दिल से सत्य है तो चित्त हमारा आनंद स्वरूप है, और उसके बाहर हमारा मन है। मन में स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प होते हैं। स्मृति जो है, जब हमारा दिल में सत्य है तो हमारे मेमोरी में, हमारे मेमोरीज में क्या होता है, हमारी मेमोरी में ये ज्ञान, ये एबीसीडी भरा रहता है, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा भरा रहता है। हमारी वृत्ति सबके प्रति आत्मिक रहती है, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहती है, संकल्प शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली और कल्याणकारी होते हैं। तो ये हमारा मन और बुद्धि एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, और फिर हमारा शरीर हमारे साथ साथ देता है, एकदम कंचन काया होती है, सत्व प्रधान काया रहती है। क्योंकि जब द्वापर युग शुरू होता है तो विक्रम हमारे अंदर आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मन राजा बन जाता है, और सत्युग त्रेता में हम देवी देवता कहलाते हैं, और जब हम मन राजा बन जाता है तो हम मन के वश में हो जाते हैं। मन पांचों कर्मेंद्रियों से जब इन्फॉर्मेशन लेकर के पांचों तत्वों की अंदर कॉन्शियसनेस में डालता जाता है, तो धीरे धीरे देहभान हमारे दिल में उतर जाता है, कॉन्शियसनेस में चला जाता है, देह के संबंध हमारी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, देह के स्वभाव संस्कार हमारी कॉन्शियसनेस दिल में चले जाते हैं, और देह के पदार्थ भी हमारी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, जिसके कारण फिर हमारा विवेक काम नहीं करता है, विवेक कंफ्यूज हो जाता है। विवेक कंफ्यूज होता है तो फिर बुद्धि निर्णय नहीं देती समय पर, और जब बुद्धि निर्णय नहीं देती तो क्या वो फाइलें सबके साथ चित्त में जाती हैं, अनडिसाइडेड फाइल्स चित्त में जाती हैं, और उससे चित्त हमारा अशांत और चंचल हो जाता है, और मेमोरी में फिर रिकॉर्डिंग ठीक नहीं होती। मेमोरी में फिर देह की रिकॉर्डिंग होती है, देह के संबंधों की रिकॉर्डिंग, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों की रिकॉर्डिंग होती है, फिर हमारी जो वृत्ति है वो देहिक बन जाती है और भावनाएं लगाव वाली बन जाती हैं। मैंपन मेरेपन वाली भावना, या तो लगाव वाली या झुकाव वाली या प्रभाव वाली, जो आत्माएं हमसे बहुत अच्छी विशेषता वाली है, गुणों वाली, उनके प्रभाव में हम आ जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। वो कहेंगे तो हम कर लेंगे, ऐसा होगा तब ऐसा कर लेंगे, या टकराव वाली भावना बन जाती है, और फिर संकल्प कैसे चलते हैं, नेगेटिव संकल्प या अवैध संकल्प चलते हैं, उससे फिर हमारा शरीर भी रोगी बन जाता है। तो इसकी जो जड़ बाबा ने कहा, अगर आपने संडे के अभी जो बाबा जब आए थे संडे को वो मुरली सुनी, और संडे की जो अवैध मुरली थी वो भी सुनी सुबह वाली, लगाव, अगर हमें बेहद की सकाश देने की सेवा करनी है तो हमें लगाव मुक्त बेहद का वैरागी बनना पड़ेगा। तो स्नेही एक शक्ति ऐसी है जिसके द्वारा हम इन बातों को भी विजय पा सकते हैं। तो बाबा स्नेह का सागर है, प्रेम का सागर है, और बाबा को अगर हम दिल में बसा लें, चलते फिरते अपने आप से बातें करें, जो हमारी कॉन्शियसनेस में क्यों कौन क्या भर गया है, अभी देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह हमारे दिल में चले गए, और इसको हम पहचाने, अपने आप से बार बार बातें करें, ये चलते फिरते हमारी बात होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अमृत वाला योग करने बैठे तो हम बात करना शुरू करें, नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अपने आप से बात करें, मैं स्थूल देह नहीं हूं, मैं स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मुझे आत्मा से सात एनर्जी सारी बॉडी में जा रही है, जिसके कारण मेरा हार्ट चल रहा है, जिसके कारण मैं सांस ले पा रहा हूं, जिसके कारण मेरा खाना पच रहा है, मैं आत्मा खाना पचा रही हूं, मैं आत्मा पैरों से चल रही हूं, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, इसको लगातार फील करें। मैं आत्मा शरीर से अलग हो जाती हूं, शरीर एकदम निकल जाता है, शरीर एकदम डेड हो जाता है, मैं वापस आत्मा शरीर में आ गई, सब कुछ चालू हो जाता है, मैं आत्मा सब कुछ चला रही हूं, इसको लगातार फील करें। फिर मैं परमात्मा की संतान हूं, सात गुणों का सागर है, उससे मुझे सातों एनर्जी मुझ में आ रही है, मुझे मेरा उससे संबंध क्या है, मां का संबंध फील करें। मां का संबंध क्या होता है, मां के रूप में ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हमको क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा के रूप में मां का प्यार देते हैं, और एक हमको दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दे देते हैं गिफ्ट के रूप में। एक सेकंड में हम बैठते हैं उस लिफ्ट में, सेकंड में बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म अवस्था में नहीं पहुंचते हैं, बाबा की गोद में उतरते हैं, सीधे बाबा की गोद में उतरते हैं, और बाबा की गोद में बैठ के फिर हम बाप का प्यार अनुभव करें। बाप हमको क्या करता है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें त्रिनेत्री नाद, तीसरा बुद्धि का, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, जिसके द्वारा अपने को मैं आत्मा देख सकता हूँ, शिव बाबा को देख सकता हूँ, परमधाम को देख सकता हूँ, और मैं ज्ञान कर्मों की गुह्य गति को देख सकता हूँ। इस कर्म का क्या फल होगा, इस कर्म का क्या फल होगा, इस कर्म का क्या फल होगा, और फिर टीचर के रूप में बाबा मुझे त्रिकालदर्शी बना देता है। मैं बाबा की गोद में बैठ के अनुभव कर रहा हूं, अब बाबा मुझे टीचर के रूप में पढ़ा रहा है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान पढ़ा रहा है, पांचों स्वरूप की ड्रिल करा रहा है, तीनों काल, अनादिकाल, आदिकाल और मध्यकाल। अनादि में मैं क्या था, परमधाम में बाबा के साथ चमक रहा था सितारे के रूप में, आदि में सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, लाइट का ताज था, रतन जड़ित ताज था। फिर मध्य में अखंड दान, मेरे मूर्तियों से लोग क्या देखते थे, आज भी भगत क्या कर रहे हैं, अखंड दानी, मेरी अखंड दानी, आज भी रात में कोई जाए मेरी मूर्ति के सामने, अखंड दानी, मेरी मूर्ति के सामने आते ही वो कोई भी भगत क्या होता है, अपने देवान को भूल जाता है, सोल कॉन्शियसनेस का अपने आप ही फील होता है, मैं देह से अलग हूं। दान माना ज्ञान का दान, अखंड महादानी माना पवित्रता का दान, उसके अंदर से गंदे ख्याल अपने आप निकल जाते हैं मंदिर में आते ही, अखंड महादानी। अखंड वरदानी माना शांति बिना मेहनत के उसको शांति प्राप्त हो जाती है, रूहानी प्यार की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति, शक्ति आ जाती है, सहन शक्ति आ जाती है उसके पास, पर उसको राइट रॉन्ग की परख आ जाती है। आज भी भक्तों को मंदिर में जाके ये परख ये फीलिंग आती है, अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी, दिन और रात 24 घंटे किसी समय मूर्ति के सामने कोई जाए तो ये आज फीलिंग आती है नहीं आती, तो ये मेरा स्वरूप कौन सा है, मध्य स्वरूप, और फिर वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप शिव बाबा, जब मैं शूद्र बन गया था शूद्र से बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू मुझे शूद्र से ब्राह्मण बनाकर अपनी गोद में बिठा के बाबा मुझे राजयोग सिखा रहा है। बाबा क्या कर बच्चे तो तुम स्थूल देह नहीं हो, तुम स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, तुम आत्मा 7 गुणों से शरीर को चलाती हो और मैं तुम्हारा बाप हूं, अमृत वेले मुझे सुबह सुबह उठ के मुझे याद करो 4 से 5 के बीच में, अपने को आत्मा समझ के मुझे परमात्मा शिव को परम धाम में याद करो, निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप को निराकारी घर में याद करो, यह है यथार्थ याद, उससे विक्रम विनाश होंगे। और जब विक्रम विनाश होंगे तो तुम्हारी आत्मा के जो विक्रम विनाश होने से फिर आत्मा पावन सत्व प्रधान बन जाएगी, और पावन सत्व प्रधान बनने के बाद तुम क्या बनोगे, फरिश्ता बन के सारे विश्व की सेवा करो, सब मनुष्य आत्मा की सेवा करेंगे, 500 तत्वों की सेवा करेंगे पावन सत्व प्रधान बना के, और फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा और घर ला जाके फिर तुम्हें सुखधाम में भेज दूंगा। तो बाबा मुझे ये ज्ञान सार रूप में दे रहा है, फील करो उस ज्ञान को, ये ज्ञान कहां पे दे रहा है, मुझे सूक्ष्म वतन में बिठा के दे रहा है, यहां नहीं, कहां पर दे रहा है, कहां पर दे रहा है, ये अंदर से फील करो, टीचर के रूप में ऐसे बाबा मुझे पढ़ा रहा है, अनुभव करा रहा है, फील करो, बाबा मुझे परमधाम लेके जा रहा है फिर सुखधाम में भेज रहा है, सुखधाम में उतर रहा हूं। सतगुरु के रूप में बाबा क्या कर रहे हैं, मेरे सारे विक्रम विनाश करा करके मुझे मुक्ति, मतलब हर एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुखधाम, कौन सी आंख में शांति धाम, कौन सी आंख में सुखधाम, बताओ कौन सी आंख में शांति धाम, कौन सी आंख में सुखधाम, राइट में के लेफ्ट में, है जी, राइट में शांति धाम और लेफ्ट में सुखधाम, आत्मा का राइट और लेफ्ट कुछ होता है क्या, मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, आत्मा की पहली आंख है बुद्धि, बुद्धि में शांति धाम और दूसरी आंख है मन, मन में सुखधाम, ठीक है, ये आंख की बात नहीं है ना, ये इस आंख में नहीं देखना है, बुद्धि में क्या बसा हुआ है मेरे, बुद्धि में क्या है, राजयोग क्या, बुद्धि योग है ना, तो बुद्धि में शांति धाम है और मन में क्या है, मन कहां लगा हुआ है, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा, हमारा धन कहां है, स्वर्ग में है ना, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, स्वर्ग है ना, तो हमारा मन स्वर्ग में है, बुद्धि शांति धाम में है और मन कहां है, स्वर्ग में, सुख धाम में है, तो ये हमारी स्थिति रहनी चाहिए, ठीक है। तो बाबा मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति का, सतगुरु के रूप में मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं, ठीक है, और फिर सखा के रूप में, बड़े भाई के रूप में, बंधु के रूप में, सारा बोझ मेरा बाबा ले लेता है, बच्चे तुम्हारा जो बोझ है ना, परिवार का बोझ है, प्रवृत्ति का बोझ है, ट्रस्टी बन जाओ, तुम्हारी और कोई जिम्मेवारी है, सेवा का बोझ है, सेंटर की सेवा है, कोई और सेवा है ना, आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर की, जो आपका हॉस्पिटल की सेवा है, सारे बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, बच्चों का बोझ है, माता पिता का बोझ है, किसी का भी बोझ है, सब मुझे हल्के हो जाओ। सखा के रूप में जो बातें किसी को नहीं बता सकते बाबा को बता दो। साधन के रूप में मैं दैवी गुणों से सजा रहा है, मुझे सत्यता से, सरलता से, नम्रता, पवित्रता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्तता, सहनशीलता, दृढ़ता, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार बना रहा है। तो बाबा मुझे सजा रहा है सज्जन के रूप में, जो 5 विकार जो अंदर कीड़ों के रूप में, अंदर कीड़ा लग जाता है किसी बीज में, तो ये 5 विकार कीड़ों के रूप में अंदर लग गए हैं, छोड़ना चाहे छूटते नहीं है, तो एक सज्जन है जो उसका ऑपरेशन बार बार करता रहता है, बाबा ऑपरेशन करता है रोज अमृत वेले, फिर दिन में कीड़े आ जाते हैं, फिर सुबह फिर अमृत वेले, फिर ऑपरेशन करते हैं, सिर जैसे रावण का सिर काटता था ना राम, फिर आ जाता था बार बार, फिर काटता था फिर आ जाता था, ऐसे ही बाबा से हर समय ऑपरेशन कराते रहो। सज्जन है, सुप्रीम सज्जन है ना, वही निकाल सकता कीड़े, मनुष्य के वश में नहीं है। जब हम रिटर्न जर्नी पे 63 जन्म वो सब आत्माएं जिनसे हमारा जीवन बीता है, 84वां जन्म तो अभी है ब्राह्मणों के साथ, 83वां जन्म में जो लौकिक इस जन्म के लौकिक थे, 82वां जन्म कुछ और साथ रिश्तेदार थे, 81वां जन्म कुछ और रिश्तेदार थे, वो सब हमारे आसपास ही हैं आज, ब्राह्मणों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, साथियों के रूप में, सब आसपास हैं। किंतु अगर याद रूपी कवच पहना है, मर्यादा रूपी ढाल अपने पास है और नियम रूपी तलवार हमारे पास है, तब ये जो रिश्तेदार जो इनके साथ विकार में हम रहे हैं 63 जन्म असर नहीं करते हैं। जरा भी नियम रूपी तलवार, मर्यादा रूपी ढाल छोड़ी साइड में रख दी, या याद रूपी कवच उतार के रख दिया, याद भूल गए तो माया क्या करती है, अटैक कर देती है। वो सारा पुरुषार्थ, मान लीजिए मैं पुरुषार्थ करते करते 35वें जन्म में पहुंच गया, विक्रम विनाश करते करते 35वें जन्म में मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए अपनी तलवार को साइड में रख दिया, नियम अमृत वेला करना, नियम चार नियम है अमृत वेला, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली सुनने के बगैर सेंटर पे कभी मुख में कुछ मत डाले, पहले आत्मा को भोजन दे उसके बाद मुख शरीर को भोजन दे। मैंने अपना नियम अपनाया सालों से, जब से ज्ञान में आया 28 साल से 29 साल से मैंने कभी मुरली मिस नहीं की, कभी मुख में कुछ डाला नहीं बिना मुरली सुने, तो ये पक्का नियम अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, कितना भी बिजी रहे, कितनी भी ड्यूटीज हो, पर ये नियम पक्का करो, बाबा मदद करता है, तो मुरली सुनने के बाद मुख में कुछ मत डालो, तो पक्का ये सच्चे ब्राह्मण की निशानी है अमृत वेला, कभी मिस ना करो, भले माया हजार बार तुम्हें हराए या कुछ भी हो जाए, पर नियम में पक्के रहोगे, तलवार हाथ में रहेगी तो माया एक दिन मरी जाएगी, पक्की मर जाएगी, आज नहीं तो कल मरेगी, एक ना एक दिन तो उसके पेट में हम तलवार लगा ही देंगे ना, खत्म कर देंगे, अमृत था ना रावण के पेट में था ना, कहते अमृत था, एक दिन एक दिन तो मार ही देंगे उसको, था तो अमृत वेला मुरली और फिर 7 दिन अटेंशन, बार बार मुरली का पॉइंट निकाल के पढ़ लो, देखो बाबा ने आज क्या कहा, मैंने बाबा जो कह रहा था मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, गलती हो जाए तुरंत फिर अपने आप को करेक्ट करो, बार बार करेक्ट करो, है ना, क्योंकि हम बहुत अभ्यासी बन चुके हैं, संस्कार माना आदत, आदत माना जो हमसे ऑटोमेटिक हो जाती है, आदत में हमें मेहनत नहीं करना, ऑटोमेटिक हो जाती, गलती अपने आप हो जाती है, गुस्सा मुझे को करना है, गुस्सा करना सहज है कि मुश्किल है, वापिस बहुत सहज है गुस्सा करना, ना करना मुश्किल है, कोई चीज मेरे सामने पड़ी है उसे उठा लेना बहुत सहज है, ना उठाना मुश्किल है, है ना, कोई मेरी महिमा कर रहा है उस महिमा में खो जाना बहुत सहज है, महिमा करते करते बाबा की याद में रहना ये मुश्किल काम है, नहीं तो ये हमको अभ्यास, इसके लिए ये मेहनत है, तो ये हमें नियम का, तो अमृत वेला मुरली सारा दिन अटेंशन, कम से कम 20-21 बार कम से कम मुरली का पॉइंट जरूर रिवाइज करने चाहिए, 21 बार सारी मुरली रिवाइज मत करो, एक एक मुरली का पॉइंट, जैसे मीठे बच्चे आज बाबा ने क्या कहा, जेब में मुरली पड़ी रहनी चाहिए, जैसे होता लव लेटर होता है ना, निकाल के बाबा जेब से रखो, निकालो एक देखा एक लाइन पढ़ी फिर वापस जेब में रखा, जैसे ही मौका मिले देखा फिर जेब में रख दिया, आधे घंटे में एक घंटे में पानी पीने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कार में बैठे नाश्ता करने के पहले, एक सारी मुरली नहीं, एक लाइन, मीठे बच्चे क्या था, आज का वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, धारणा के लिए मुख्य सार क्या था, कोई अच्छी लाइन है तो उसको अंडरलाइन कर लो, है ना, एक छोटे से कागज पे A4 साइज का चौथा हिस्से का पेपर है वो उस पर लिख के रख लो, है ना, उसको जेब में रखो, तो दिन में 20-21 बार तो कम से कम रिवाइज करो, और फिर सोने के बाद लेटर लिखो बाबा को, अपना सारा पोता मेल दो, हिसाब किताब दो, ऑडिट करो अपने आप को, फिर चार्ट भरो याद का, जो भी गलतियां हुई बाबा को लिखो, बाबा मुझसे आज ये गलती हो गई, सच्चाई से लिखो, बाबा मुझसे आज ये पाप हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बाबा मेरे मन में आज ये बहुत वैर संकल्प चला, लिखो और फिर बाबा को सच्चाई से फिर मुरली फिर दोबारा से रिवाइज करो सोने के पहले, सारी बात सारी मुरली भले नहीं, दो लाइन ही रिवाइज करो, मीठे बच्चे वरदान रिवाइज करो और फिर बाबा को याद करके सोचो और टाइम पे सोचो, तो अमृत वेला मुरली सारा दिन अटेंशन, बाबा की श्रीमत का अटेंशन और सोने के पहले पूरा हिसाब किताब देके बाबा को याद करके सो जाना, तो ये चार नियम है, ये तलवार है हमारी, और ढाल क्या है, मर्यादा, पहले तो पवित्रता ही है, है ना, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी पवित्रता, वैर संकल्प भी अपवित्रता है, वैर संकल्प माना اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کرتا ہے، ایسا کیوں کرتی ہے، اس نے ایسا، یہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، بابا کا بچہ ہو کے بھی ایسا کرتے ہیں، وہ ڈرامہ کے اندر ہے نا، وہ اس کو ڈرامہ کے اندر جو بھی ہو رہا ہے ساکشی ہو کے دیکھو، یہ بھی اپوترتا ہے. جتنی پوترتا بڑھے گی اتنا ہمارا امرت ویلا اچھا ہوگا، اتنا مرلی اندر اچھی جائے گی. اگر ہمارے اندر پوترتا کم ہوگی، براہمنوں میں دوسری پوترتا اپوترتا کم ہے کنتو یہ اپوترتا بہت زیادہ ہے، دوسرے پہ کوشچن اٹھانا، بابا کا بچہ ہو کے بھی ایسے کرتے ہیں، بابا کا بچہ ہو کے بھی ایسا کرتا ہے، بابا کا بچہ ہو کے بھی ایسے کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کیا، ایسا ہوتا ہے کیا، یہ کوشچن اٹھانا بھی ڈراما میں ہے نا. ساکشی ہو کے دیکھو، آپ مت پھنسو، وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو. تو یہ پوترتا کی دھارنا جتنی بڑھے گی اتنا یوگ بڑھے گا. پھر شدھ ساتوک بھوجن، بابا کی یاد میں بھوجن بنانا، بابا کی یاد میں کھانا، پھل سبزی روٹی سلاد انکرت دلیا دودھ، یہ ساتوک بھوجن ہے. راستک بھوجن پراٹھا پکوڑا سموسا، یہ راستک بھوجن، اس سے آلس تال بیلاپن پیدا ہوتا ہے. تامسک بھوجن چائے کافی ہے نا، لہسن پیاز جیمس کولڈ ڈرنکس، یہ تامسک بھوجن ہے. یہ براہمنوں کے تامسک بھوجن کی بات کر رہا ہوں، نان ویج کی تو خیر ہے ہی تامسک، تو یہ تامسک بھوجن نہیں کھاؤ. ٹھیک ہے، آج تامسک بھوجن اتجنا پیدا ہو، چنتا پیدا ہو، بھے پیدا ہوا، ڈر لگے گا، غصہ آئے گا، چڑچڑاپن آئے گا، کھاؤ گے تو ٹھیک ہے، پیو گے تو ایسی چیزیں، تو اس سے نقصان ہوگا. تو یہ ساتوک بھوجن. پھر ستسنگ مانا بابا اور مرلی کا سنگ، اس کے علاوہ کوئی اور سنگ مت کرو. کوئی میگزین پڑھنا، کوئی کتاب پڑھنا، کوئی کسی اور گیان کی بات پڑھنا، ہٹ یوگ راج ہٹیوگ ہٹ یوگ کرنا، یہ جو مدرا لگا کے بیٹھتے ہیں نا، ایسے کچھ ایسے لگا کے بیٹھتے ہیں، کچھ ایسے کر کے، کچھ ایسے کر کے بیٹھتے ہیں. ارے اگر آپ بابا کہتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یوگ کرو، کام کرتے روٹی بناتے یوگ کرو، گاڑی چلاتے یوگ کرو، ایسے گاڑی چلا سکتے ہیں، ایسے روٹی بنائیں گے کیا؟ اس کی کوئی ہمیں آوشیکتا، کوئی مدرا لگانے کی ہم کو آوشیکتا نہیں ہے. بابا کے بچوں کو مدرا لگانے کی آوشیکتا نہیں ہے، کوئی مدرا اس کو نہیں چاہیے. بابا کے بچوں من کی مدرا ہونی چاہیے بس، بابا کی یاد اس میں رہے. کوئی ہم کو پرانایام کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے، ہمیں کوئی اور کریا جو بابا برہما بابا نے کیا ہم کو کرنا ہی نہیں ہے. فالو فادر مدر، ہمیں برہما بابا نے جو کیا ایکوریٹ وہی کرنے کا ہے. کسی گرو نے بتایا، کسی رام دیو نے بتایا، کسی نے بتایا، اس کو سننے کی آوشیکتا ہی نہیں ہے، کسی اور کی کلاس کرنے کی آوشیکتا ہی نہیں ہے. مرلی سب سے بڑھیا کلاس ہے، ستیہ 100% پازیٹو ٹیم ہے. اور پھر دیوی گنوں کی دھارنا، کبھی بھی غصہ آئے غصہ مت کرو. غصہ کرو گے 3 دن تک آپ کا یوگ لگے گا نہیں. اداس ہو گئے 5 دن تک آپ کا یوگ نہیں لگے گا. کسی کے پرتی من میں بدلا رہیں گی بھاؤنا رکھ لیے، پھر جب تک وہ اس کو معاف نہیں کرو گے تب تک آپ کا یوگ لگے گا نہیں. جلدی بازی مت کرو، 18 گھنٹے تک آپ کا یوگ لگے گا نہیں. ڈر اندر من میں کو بسا لے، جب تک آپ ڈر کو نکالو گے تب تک آپ یوگ لگے گا نہیں. اس لیے کوئی بھی نیگیٹو بات نہ کر کے ستیتا نربھیتا انترمکتا ایکانتواسی ایکاگرتا سرلتا نمرتا ادارتا مدھرتا، کوئی کتنا بھی کڑوا زہر بولے آپ میٹھا بولو، کتنی بھی کوئی جلدی کرے آپ دھیرج رکھو، آپ سنتوشت رہو، آپ مسکراتے رہو. ان کو جو کرنا ہے ان کے کرم وہ جانے، آپ کے کرم آپ جانو. میرے وکرم مجھے وناش کرنے، ان کے وکرم وہ وناش کریں. میں کسی اور کے میرے وکرم کوئی وناش نہیں کر سکتا، میں ان کے وکرم وناش نہیں کر سکتا. تو 63 جنم ہمیں یہ چار یہ ڈھال پکڑ کے رکھو، اور یاد روپی کوچ ہمیشہ پڑا رہے. جیسا بھی ذرا بھی ہٹا نا تو میں دیکھا سارا شریر جل جاتا ہے، مطلب ہماری استھتی واپس، ہمیں واپس 83 جنم میں پہنچ جانا پڑتا ہے. 35 سے 84 جنم میں 84 میں پہنچ، پھر دوبارہ کاٹنا شروع کرو، پھر یوگ لگانا شروع. پھر یوگ لگتا نہیں ہے، بہت مشکل لگتا ہے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر 21 جنم تک پہنچنا ہے ہم کو، تب جا کے ہماری کرماتی استھتی بنے گی. تو وکرماجیت مانا 84 جنم سے لے کے 21 جنم تک ہماری وکرماجیت استھتی ہوتی ہے. اس میں ہم براہموں کی استھتی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. پر یاد رہے، اگر نیم مریادا پکی رکھیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے 21 جنم پر، ارتھات وکرماجیت بن جائیں گے. اور 21 جنم سے لے کے پہلے جنم تک کرماتی استھتی ہوتی ہے، اس کے بعد ہماری فرشتہ استھتی آتی ہے. رائٹ، یہ الٹی ریٹرن جرنی ہے نا. تو اس طرح سے 84 سے 21 جنم تک وکرماجیت ستھی، اگر ہم نرنتر ہماری ابھیاس چلتا جائے، اور پھر ہماری کرمات ستھی، اور اس کے بعد پھر فرشتہ ستھی. تو اس طرح سے ہم ابھیاس کرتے جائیں. پر اس کے لیے یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے دل سے صرف ایک بابا کو بٹھائیں، باقی دیہ سے اپنے دل سے اپنی کانشیسنیس سے دیہ کے سمبندھ دیہ کے سبھاؤ سنسکار دیہ کے پدارتھوں کا تیاگ ہی بےحد کی ویراگیہ ورتی ہے. इसमें चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करते रहो कि ये इसमें ये सब यही छूटने वाला है, देह के संबंध यही छूटने वाले हैं, देह के स्वभाव संस्कार यही रहने वाले हैं, देह के पदार्थ यही रहने वाले हैं। अंत समय में ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि देह हमारी खराब हो जाएगी, संबंध सब साथ छोड़ जाएंगे, देह के पदार्थ कोई काम के नहीं रहेंगे, कुछ पैसे से कुछ मिलेगा नहीं, सब जहरीला हो जाएगा और देह के स्वभाव संस्कार सब कुछ होगा नहीं, तो स्वभाव संस्कार कहां से आएंगे, सब अंत में समय शिक्षक बन जाएगा। किंतु अश्वतन वो बनते हैं जो बाप की श्रीमत पे चढ़ के इसको प्रैक्टिकली करते हैं, समय से पहले करते हैं, और 108 रतन नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार वो बनते हैं। जो बाप के समय उनका शिक्षक नहीं बनता, समय से पहले वो अपना एप को तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम अगर हम अभी हम बाबा की श्रीमत पे चल के इन चीजों को छोड़ते जाएंगे तो हमारी ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति, जो सच्चे ब्राह्मण का मतलब ही है बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला, उसको हम अभी कर लें, ताकि समय पर अगर हम समय पर करेंगे अर्थात विनाश के समय करेंगे तो हमारा हम नहीं कर पाएंगे और हम हमारा नाम किसमें आएगा, या तो प्रजा में आएगा, दास दासियों में आएगा। ठीक है, तो अभी बाबा कहता है बच्चे समय को पहचानो, मैं विश्व शिक्षक हूं, तो मेरे बच्चे मास्टर विश्व शिक्षक हो, और उसको समय को शिक्षक नहीं बनाओ, और जैसे मैंने किया ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे ही हम फॉलो करें, अपने तन को भी बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दें, मन को भी हर संकल्प बाबा जैसे कहे वैसे चलाएं, और धन माना सबसे बड़ा धन है समय, समय को बाबा में लगाएं, बाबा की याद में लगाएं, श्रीमत पे लगाएं, संकल्पों को बाबा की श्रीमत पे लगाएं, और श्वास अपने बाबा की श्रीमत पे चलाएं। तो इतना अगर हम करेंगे तो हम समय से पहले तैयार हो जाएंगे और बाबा के साथ कैसे चलेंगे, साथी बन के बराती बन के कैसे चलेंगे, साथी बन के चलेंगे, राइट, बराती बन के नहीं है ना, तो साथी बन के जाएंगे, तो साथी बन के वापस आएंगे और बाबा के साथ रॉयल फैमिली में आएंगे। ओके, ओम शांति।